ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज वैसे तो क्रिएटिव मेडिटेशन लिखा था, हम क्रिएटिव एक्सरसाइज भी करेंगे, और हम समझते हैं कि राजयोग अर्थात हम क्या कहते हैं, राजयोग क्या है, कहते आत्मा और परमात्मा का मिलन। लेकिन राजयोग में भी ये भी कहते हैं कि सेल्फ कम्युनिकेशन भी राजयोग है, खुद के साथ बात करना ये भी राजयोग है, रो रिहान करना, आत्माओं के साथ बात करना वो भी राजयोग है, और परमात्मा के साथ बात करना वो भी राजयोग है। तो हम आज तीनों लेवल पर काम करेंगे। ये जो 1.5 दिवस में हमने क्लासेस भी सुने, काफी सारी बातें ऐसी सुनी जिस पर चिंतन भी आप सबका चला होगा, और काफी सारी ऐसी बातें थी जो हमको मजबूर भी किया सोचने के लिए, है ना। जैसे हमने कल डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का क्लास सुना, सूरज भाई का क्लास सुना, अभी उषा दीदी का क्लास सुना, सभी का फोकस किस पर था, कर्मों पर। हम जो कर रहे हैं उसका कितना इंटरेस्ट बन करके हमारे सामने आ रहा है, तो अभी उसको और आगे बढ़ाना है कि स्टॉप करना है, है ना। अभी जो भी हुआ, देखो हम पास्ट में वो न सब नहीं सोचेंगे मेरे से ये हो गया वो, जो भी हुआ, जो भी हुआ, चाहे वो ज्ञान से बिल्कुल अलग था, विपरीत था, ज्ञान के अनुकूल नहीं था, बहुत सारी बातें जो हम सब ने करी है, है ना, तो उसको हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। लेकिन उसके लिए हम एक कहानी जरूर सुनाना चाहेंगे, वो है जो युद्ध के स्ट्रैटेजीज की एक बुक थी जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें एक स्टोरी सुनी थी, तो वो आपको जरूर शेयर करना चाहेंगे कि एक राजा था, वो जो किताब थी ना उसमें हिस्ट्री में जो जो फैक्ट्स हुआ, मना जो युद्ध हुए और उसमें जो स्ट्रैटेजीज यूज हुई थी, मना जो तरीके यूज हुए थे वो उसमें लिखे हुए थे। तो उसमें एक स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी मुझको कि एक राजा था, तो उसके नजदीक एक टापू था और टापू पर उसको चढ़ाई करनी थी, तो वो राजा सेना भेजी तो सेना वापस आ गई, दोबारा भेजी दोबारा वापस आ गई, ऐसे 5-7 बार हो गया कि सेना भेजे और सेना वापस आ जाए। तो बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ उसके ऊपर, ये सत्य घटना है, ये सत्य घटना की स्ट्रैटेजीज है। तो डिस्कशन हुआ कि क्यों सेना वापस आ जाती है, तो सभी जो जाते थे युद्ध करने तो उन्होंने अपने अपने प्रॉब्लम सुनाए। अभी प्रॉब्लम क्या था कि वो जो टापू था उसकी जो बाउंड्रीज थी उस पर माउंटेन्स थे, पहाड़ी थी, उसका जो वो टापू का जो सर्कल था वो टापू से मना माउंटेन से घिरा हुआ था। तो जब ये सैनिक जाते थे तो हमेशा पावरफुल कौन होता है, आज भी युद्ध में ऊपर वाला पावरफुल ही होता है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे बहुत जल्दी टारगेट कर सकता है। तो जैसे ये सैनिक चढ़ते थे तो ऊपर से ये लोग वार करते थे, तो ये जीत नहीं पाते थे, और फिर जब डर आता था आपकी भी अभी नहीं जीत पाएंगे तो वो तुरंत ही वापस आ जाते थे। तो बहुत सारा मंथन चलने के बाद अभी रास्ता क्या निकाला जाए, तो एक मंत्री तैयार हुए, कहते मैं इस बार स्ट्रैटेजी बनाता हूं, मना युक्ति रचता हूं, युद्ध रणनीति जिसको कहते, स्ट्रैटेजी इज युक्ति, तो प्लान किया, रणनीति तैयार हुई और सबको वो सैनिकों को ले गया उस टापू पर। अभी टापू पर ले गए और अभी पहाड़ चढ़ना था, मना थोड़ा चल करके चढ़ना था, तो थोड़े चढ़े तो उसने जोर से पीछे से आवाज दी कि पीछे मुड़ो, पीछे देखो। तो सारे सैनिक पीछे मुड़ करके देखने लगे, तो वो मंत्री ने क्या किया था, जिस नाव में वो लोग आए थे ना, वो सारी नाव जला दी, वहीं की वहीं उनके आंखों के सामने जला दी। अभी सैनिकों के पास क्या ऑप्शन था, मरो या मारो, मतलब और कुछ रास्ता ही नहीं बचा था, क्योंकि वापस जा नहीं सकते, समुद्री रास्ते से आए थे और अभी नाव ही नहीं है, तो अभी तो कुछ भी हो जाए। तो एक उसमें वो दृढ़ता आई सैनिकों में कि अभी तो कुछ भी करके जीतना ही होगा, या तो सारे मारे जाएंगे या तो हम जीत करके आएंगे, ये दो ही था उसके पास। तो फिर वो लोग कैसे भी करके हिम्मत रख करके चढ़े और फिर वो जीते थे, वो टापू को जीते थे इतिहास में। नाम मैं भूल गई हूं लेकिन है ये सत्य बात, नेपोलियन। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये था कि वो जीत करके आए। तो ये जब मैं पढ़ रही थी तब मेरा भी संकल्प चला, वो थी एस्केप बोट्स, माना भाग जाने की नावें। थोड़ा भी डर लगा, चलो भागो, नाव में चढ़ो और नाव को उठाकर भागो, बच जाओ। तो कहां कहां हम ब्राह्मण भी एस्केप बोट्स को यूज करते हैं, कैसे कैसे आप लोगों को याद होगा, अनुभव भी होगा कि जब भी कोई बात नहीं बनती है तो हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं। यूजुअली जैसे उषा दीदी मोबाइल की बात बता रही थी तो मेरा चिंतन चला उस पर। कई बार रात देर रात तक भाई बहने मोबाइल पर होते हैं, उनको सुबह पूछो भाई क्यों आप मोबाइल देख रहे थे, तो एक ही जवाब सबका होता है, क्या नींद नहीं आ रही थी ना तो देख रहे थे। सही है या नहीं, सुनते हैं ना ये जवाब, वे नींद नहीं आ रही थी तो फिर हम मोबाइल सर्फिंग कर रहे थे। बाबा ने क्या बोला है कि नींद नहीं आवे तो योग करो, सकाश तो दे ही सकते हैं, योग करो। वैसे भी योग में नींद आती ही है, तो जब नींद नहीं आवे तो योग करेंगे तो नींद आ ही जाएंगी, कितनी अच्छी बात है ना। ये एस्केप, एस्केपिज्म इसको कहते हैं, ये नहीं हुआ तो ये किया, बहुत टेंशन चढ़ा तो खाते रहेंगे, ये आज होता है जो डिप्रेशन में होता है या बहुत जिसका दिमाग चलता है ना वो खाता रहेगा खाता रहेगा, एस्केपिज्म। जो छोटी बहनें, बड़ों की तो बात नहीं है लेकिन छोटे छोटे जब होते हैं, बीमारी आई तो कहते मैं घर जाऊं ना, घर याद आएगा, एस्केप है ना। तो जहां से हम छूटने का ट्राई करते हैं ना, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, फिर पता चले कि आज प्रोग्राम है, आज दीदी सबको ड्यूटी देंगी, सबको भाषण कंपलसरी करना है, तो कहते दीदी आज ना पेट दुख रहा है ना, आज नहीं बोल पाऊंगी, आज ना बहुत ही गलत चल ही नहीं रहा है, ये सारी एस्केपिज्म है। तो एक बार दो बार हमेशा ऐसा करते रहे तो सीखेंगे कब ना। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं। तो हमने आपको जो ये पेपर दिया है वन साइडेड है, वन साइड प्लेन है, वन साइड लिखा हुआ है, आपको प्लेन के साइड लिखना है। आपको बाबा को साक्षी मानते हुए ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसमें हम एस्केप करते हैं, मना एस्केपिज्म को क्या कहेंगे, भाग जाना, भागेड़ु वृत्ति कहते ना, या तो भाग लेना या तो भाग जाना, ये तो भाग लेना नहीं पर भाग जाने की जो आते हैं, तो वो क्योंकि वही बातें हमको कमजोर बनाती। कई बार हम घर नहीं चले जाते हैं लेकिन यहां मान लो अपसेट हुए, कोई भी बात हुई, किसी ने कुछ बोल दिया और उसी समय घर से फोन आ गया, मम्मी का फोन आया, कैसे हो, तो क्या होता है उस समय, है ना, उसी समय ना चालू हो जाएगा और जो हुआ वो सारा बोल देंगे, है ना। तो आजकल देखा गया, चाहे लौकिक जगत, केवल ब्राह्मण संसार की बात नहीं है, पूरे संसार की बात है, मैक्सिमम जो ब्रेकअप्स होते हैं मोबाइल के कारण, डाइवोर्स होते हैं मोबाइल के कारण, मैक्सिमम रेट ब्रह्मा कुमारीज में भी जो यज्ञ छोड़ देने वाली बहनें हैं उनका भी मोबाइल ही कारण है, एकमात्र कारण मोबाइल आज के टाइम में। इसलिए कहते कि बड़े बड़े विकार तो हम सबने जीत लिए, लेकिन सबसे बड़ा रावण वर्तमान समय का है, वो है मोबाइल। कई बार कहते हम क्लासेस सुनते हैं, पर किसी एक का ही क्लासेस सुनते रहेंगे, वो जो कहेंगे उतना ही पानी पिएंगे, ऐसे ही सोएंगे, ऐसे ही चलेंगे। निमित्त कुछ कह रहे हैं वो कोई मान्य नहीं रखता, लेकिन क्लास में सुना, उसने बोला मना कर लिया। हम दो दिन से क्लासेस सुन रहे हैं, सतीश भाई ने क्या बोला, किसका क्लास सुनना चाहिए? मुरली। बाबा संपन्न बने मुरली से, दादियां संपन्न बनी मुरली से, किसी के क्लास से नहीं। क्लास अच्छे हैं, बहुत अच्छे कराते हैं, बहुत अच्छी पॉइंट्स देते हैं, हमारी विचारों को दिशा देते, अच्छी बात है, लेकिन एक ही तो गलत है। आप इसलिए इस प्रकार से चेकिंग करना कि कोई भी क्लास है, मैं अगर एक ही आत्मा का 20 बार क्लास सुन रही हूं, भले वो वैरायटी क्लास है, लेकिन उसी का सुनेंगे, दूसरे का शुरू होगा तो कहते इनका बंद करो, इनका चलाते हैं, वो गलत है। सुनना गलत नहीं है, सबका सुनो, सब मंथन करते हैं, सब अपने अनुभव से कोई बात बता रहे, अच्छी बात होती है, लेकिन सबसे अच्छी बात वो होती है जो मुरली बताती है, और दूसरी सबसे अच्छी बात होती है जो हमारी निमित्त बताती है, क्योंकि वहां का माहौल, वहां की बातें, आपकी कमी कमजोरी विशेषताएं, सब कुछ बड़ों के ध्यान में ही होता है, तो आपको कैसे चलाना वो उनको ही पता होता है। ये बात आपको भले थोड़ी ना भी पसंद आए, लेकिन ये हकीकत है। जैसे मान लो कीवी है, कीवी का फ्रूट होता है ना, बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हम केवल वही खाएंगे तो ये इंडिया के लिए नहीं बना है, हमारे वातावरण के लिए नहीं बना है वो, समझे। कोई चीज होती है ना, वो वातावरण के अनुकूल नहीं होती है, तो हमें नहीं करना चाहिए। तो वो हेल्थ को है, बहुत सारी बेनिफिट्स उसके, लेकिन हमने गलत वातावरण में गलत चीज खा ली तो वो गर्मी पैदा करती है शरीर में। कोई चीज ठंडे प्रदेश में खाने की है, हम यहाँ रोज खाएंगे तो वो मुश्किल करेगा। तो शरीर का होता है ना, ऐसे आत्मा का भी होता है। जिस स्थान पर हम रहते हैं वहां का वायुमंडल जो है, हमारी जो लिमिटेशंस है, उसके अनुकूल क्या होना चाहिए, तो वो अगर बताया जाए तो वो इजी रहता है। तो हम तो समझते हैं कि हमारे जो निमित्त है वही हमारे माता पिता है, वही पालना देते हैं और वही हमको राइट समझते हैं। उस समय कई बार वो बात हमको अच्छी नहीं भी लगती होती है, लेकिन वही राइट है। तो इसलिए आज इसमें हमको लिखना है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप आज समझते भी हो कि ये टाइम वेस्टिंग है, ये जो मैं कर रही हूं वो गलती है, हम भी समझते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, तो वो बातें आपको इसमें लिखनी है। डीप रियलाइजेशन के साथ बाबा को सामने रखते हुए इसको लिखना है, ठीक है। अभी भले एक दो पॉइंट लिखो, फिर हम उसकी गहराई में, अगर एक भी लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दिशा में हमको आगे क्या लिखना है। तो जो भी ऐसी बातें हैं जिससे आप छूटना चाहते हो, जिसको आप छोड़ना चाहते हो, जो आप भी समझते हो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, किसी ने कहा इसलिए नहीं, लेकिन हम सबको महसूसता होती ही है कि ये मैं गलत कर रही हूं, क्योंकि ज्ञान तो हम सबके पास है। तो जो भी छोड़ना चाहते हो वो लिखो इसमें, जिससे छूटना चाहते हो वो लिखो, जिनको छोड़ना है उनको लिखो, समझे ना उसको। बाबा कहते थे कि इवन सेंटर में भी कोई एक ही सखी है, ऐसा नहीं। हमें याद है हमारी दीदी चंद्रिका दीदी बहुत अच्छे से हमको समझाया था कि कोई भी बात मन में आए तो मेरे से शेयर करना। वो कहते थे, कहते कि अगर आपने आपस ही, क्योंकि हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे दीदी के पास, तब यज्ञ में ट्रेनिंग ऐसे रेगुलर बेस पर नहीं होती थी, तब दीदी ने हमको ट्रेनिंग दी थी, तो हम नौ कन्याएं थी। तो अगर कोई भी बात है हम नौ ने आपस में अगर शेयर किया या एक दूसरे को पूछ लिया, तो दीदी कहती थी कि उनको जितनी समझ है ना उतनी ही समझ आपको मिलेगी, लेकिन बड़ों के पास जाएंगे तो उनके पास लंबा अनुभव है, उनके पास समझ है, तो वो आपको सही गाइडेंस देंगे। तो तब से गांठ मार ली थी कि कुछ भी है तो सीधा हमको दीदी से ही बात करनी है। तो ये जरूर, और दीदी इतनी ओपन भी थी, आज भी अगर कुछ कहना है और हमने अगर कहा हो कि दीदी आपसे बात करनी है, कितनी भी व्यस्त रहती है लेकिन वो टाइम जरूर निकालेगी, याद करके फोन करेगी कि आप कह रहे थे ना मिलना, क्या बात है ना। तो हमने अगर कोई सखी भी बनाई है तो उनको भी छोड़ना होगा, तो इसलिए मैंने पूछा कि किनको छोड़ना है, वो भी उसमें लिखो। कई बार मजबूरन फंसे हुए रहते हैं हम कि भी वो हमसे थोड़े बड़े हैं, निमित्त नहीं है लेकिन हमसे थोड़े बड़े हैं, वो कुछ हमें गलत कह रहे हैं। स्पेशल फेवरेटिज्म भी होता है, स्पेशल टोली खिलाना, स्पेशल सौगात देना आपस में अंदर अंदर, वो भी गलत है। निमित्त दे वो सही, निमित्त टोली दे वो सही, निमित्त सौगात दे वो सही, आपस में देना वो भी गलत है, क्योंकि वो भी छिप करके ही हुआ ना, और सारी छिपने की तो बात आ गई। तो आज छिपाया एक बात हमने किसी का, कल 100 बात छिपानी पड़ेगी। इसलिए जिनको छोड़ना है, भले आज का आज नहीं कर पाओ चलेगा, पर रियलाइज तो करे कि वो करना है हमको, तो इसलिए वो लिखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट। ये सबसे बड़ी बात है जो अभी तारा दीदी सुना रही है, बहुत बड़ा विघ्न आज जो चल रहा है यज्ञ में। स्टूडेंट्स तभी हमारे ऊपर चढ़ते हैं जब हम उनके ऑब्लिगेशन में होते हैं। हाँ जी, नहीं होना चाहिए। कुछ लेने की इच्छा हुई, कुछ खाने की इच्छा हुई, हमने किसी माता को, अच्छा आप ये बनाते हो, आप जरूर लाना सेंटर पर, ये हमने बहुत टाइम हो गया नहीं खाया है ना। आप निमित्त को बोलो, आप निमित्त को बोलो, कुछ भी आपने इतना भी किसी का ऑब्लिगेशन लिया, वो इतना प्रेशर डालेगा और हमको भी आदत पड़ जाएगी ना उनसे हेल्प लेने की। कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, अगर आपको हेल्प मांगनी है तो निमित्त को कहो कि हमको इस सेवा में किसी का हेल्प चाहिए। निमित्त भेजेगी ना तो आप उसके ऑब्लिगेशन में नहीं रहेंगे, लेकिन आपने खुद मांगा तो आप ऑब्लिगेशन में आ जाएंगे। और आज बड़े बड़े सेंटरों, मना बड़े बड़े विघ्न, बड़े बड़े सेंटर की बात नहीं कह रही हूं, कोई भी हमारे पर हावी तब होता है जब हमारा हाथ ऐसा होता है। वो ऊपर कब आए, जब हमारा हाथ ऐसा है। हमारी पालना बाबा करते हैं, जो भी चाहिए जैसा भी चाहिए, भले उनकी कैपेसिटी के अनुसार देंगे, है ना। जरूरी नहीं कि आपको बहुत हाई फाई, जो भी पॉसिबल होगा उनका बेस्ट दे रहे हैं बहने, लेकिन वो ही हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि कल उठ करके वही छोटी छोटी चीजें, अभी उषा दीदी का सुना ना कि उसने भेजा, पुष्पमणि दादी ने छोटी छोटी चीजें घर में भेजी, वो चीजें नहीं भेजी, खुद चली गई, है ना। तो ये चीजें बहुत बड़ा कर्म का हिसाब होता है। और इसलिए एक सिद्धांत रखो कि पैसे के मामले में सबसे ज्यादा हम दबते हैं पैसों के कारण ना, हमारा पालनहार भगवान है। सेवा अर्थ हम कुछ कर रहे हैं वो कहां से भी उखाड़ कर देगा हमको, क्योंकि वो जिम्मेवार है ना। लेकिन किसी भी वीआईपी के पास भी उसने दिया है ना, खास करके कोई वीआईपी देता, मैं कहता ये नहीं भंडारी, अपना भाग्य जमा करो, हमें क्यों हाथ में लेना है। फिर कल उठ करके आज पैसा दे रहा है, कल उठ कर कुछ और डिमांड करेगा, फिर और डिमांड करेगा, और हम दबते चले जाएंगे, डिमांड पूरी करते जाएंगे, कब तक। तो जिनको छोड़ना है वो खास लिखना, कोई स्पेशल पालना किसी को ना हमको देनी है और ना ही लेनी है। सही बात है, हाँ। स्टैंडर्ड कंपनी यूज ना करे, जो सेंटर का स्टैंडर्ड है उस अनुसार रहे, है ना, मेन बात ये है कि मैं तो यही ब्रांड है ना, हमारा कोई ब्रांड नहीं है, हम ब्राह्मण कल्चर वाले हैं, सेंटर की जो ब्रांड वो मेरी ब्रांड है ना, उसी में हमको खुश रहना है। तो ये जरूर सबने लिखा होगा। अभी इसको है ना आपको बोट बनानी है, बोट बनाना तो आता ही है ना, छोटेपन में बोट बनाते थे। इसका चार फोल्ड नहीं आता है तो मैं सिखा देती हूँ, इसका ये चार फोल्ड करो, ये हाफ हुआ, लिख लिया ना सबने, ब्लैंक नहीं हो बोट, बोट सामान के साथ डुबोनी है हमको आज, है ना। तो जो भी है वो लिख करके पूरा करो आज उसको, जिससे छूटना है, जो मुझे छोड़ना है और जिनको छोड़ना है, ये सारा प्रॉब्लम है ना, वो हमको लिखना है। मोबाइल देखने की आदत है लेट नाइट तक, उसको छोड़ना है, आदतों को छोड़ना है, लिखो उसमें, मोबाइल नहीं छोड़ देना है, लेकिन जो कर रहे हैं है ना उसको छोड़ना है। तो ऐसी ऐसी चीजें कि ये छोड़ना है, जिससे छूटना है और जिनको छोड़ना है। तो ये हाफ मोड़ा, अभी इसको और एक फोल्ड, माने ये छोटा हो गया, स्क्वायर हो गया। अभी उसका जो एक है ना, एक जस्ट सिंगल सिंगल, उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे, बाकी के तीन फोल्ड हमने ऐसे दूसरी साइड फोल्ड किया, ठीक है। तो ऐसा होगा ऐसा, ठीक है, एक साइड एक और तीन वाला एक साइड, वेरी गुड। फिर ये जो बीच में जो टोपी बन गई ना, उसमें उसको उसको थोड़ा स्प्रेड कर देते हैं, अंगुली डाल करके उसको, आया कि नहीं आया, ये ऐसा बना। फिर हमने हाँ, किसी की तो बोट नाव तैयार हो गई, नाव, हाँ ये तैरने के लिए नाव नहीं है, ये डुबोने की नाव है। हाँ फिर ऐसे उसको खोल दो, ये दोनों है ना सिले, उसको खोल दो। हाँ तो ये हो गई आपकी मस्त नाव, ठीक है। वो जो मंत्री था ना, उसने नाव को जलाया था ना, सबकी बोट्स, इसके बोट्स जला दी थी, हम जलाने कहाँ जाएंगे, मुश्किल होगा, तो इसलिए हमने डुबाने के लिए रखा है। कहते कि डूबे भी वहां जब, जहां पानी कम था, या पानी कम है पर इसको आज अच्छे से डुबाना है हमको, ठीक है, पर वो लास्ट में डुबाएंगे। एक बात हो गई, ये सबने लिखा ना, प्लीज थोड़ा रिस्पोंड करेंगे तो हमको, हाँ वेरी गुड है ना। देखो हमारे लिए करना है, खेल खेल में हमारी कमी कमजोरियों को छोड़ेंगे। दूसरा ये है कि आज आप एक स्वमान लिखेंगे, आपका प्रिय स्वमान, जिसके लिए सूरज भाई जी ने कहा था कि स्पेशलाइजेशन, आप सबको पता हो कि अभी है ना MBBS डॉक्टर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होते हैं, जो स्पेशलाइजेशन वाले होते हैं, मास्टर्स में भी स्पेशल किसी एक ही अंग के लिए। आपको पता है एक डॉक्टर के पास हम गए, वो कॉनी से लेकर के पंजो तक इसका ही मास्टर था, और वो भी राइट हैंड का ही। आप लेफ्ट उसको दिखाएंगे तो कहते मेरे को नहीं समझ में आता, लाइक इतनी स्पेशलाइजेशन की, एक एक एनाटॉमी का स्पेशलाइजेशन होना। तो जो कल बताया कि एक विशेषता से एक देवी पूजी जाती है अभी तक, तो हम लोग जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाले नहीं हो कि भाई सब कुछ है लेकिन कुछ ठोस नहीं कह सकते कि हाँ ये तो है ही हमारे पास। और बाबा क्या कहता है कि एक विशेषता सारी विशेषताओं को लाती है, एक कमजोरी भी सारी कमजोरियों को लाती है। तो आज आप अपना स्वमान लिखेंगे, आपको अभी पास्ट जो हो गया उसको भूल जाओ, पास्ट तो हमने इसमें लिखा, छोड़ना छूटना है ना सब कुछ लिख दिया, लेकिन मुझे आज से किस वैल्यू की मास्टरी लानी है। कोई कहे ना शांति चाहिए तो ये रंजन दीदी के पास जाओ, मास्टर है, चाहे कुछ भी हो जाए वो शांत चित, मैंने मैं उनके ही संपर्क में हूं तो है ना, तो ये है कि शांत। या कोई कहे कि प्योरिटी देख लो, तो भाई इनके पास चले जाओ, ये मास्टर है इसके। कई बार होते हैं ना भाई कोई रोग होता है तो कहते हैं भाई इसका मास्टर कौन है, बेस्ट डॉक्टर के पास जाना है। तो हम देवियां किस विशेषता को लेकर के पूजी जाएगी, मैं स्वयं किस विशेषता से पूजन योग्य बनना चाहती हूं, वो विशेषता आज आप लिखो। और आज के बाद अभी से सारी एनर्जी, सारा फोकस मुझे उस विशेषता की ओर लगाना है। सारे गुण हम सभी बहनों में हैं, तभी तो बाबा के बने हैं, तभी तो बाबा ने सिलेक्ट किया है, लेकिन उसमें अभी एक पर बहुत अटेंशन रख करके उसको संपूर्णता तक ले जाना है। एक गुण संपूर्णता तक आएगा ना, बाकी सारों का लेवल रेज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मुझे कौन सी देवी बननी है? संतुष्टता की देवी, संतोषी बनना है, खोड़ खापड़ निकालने वाली खोड़ियार बनना है, दूसरों के नहीं खुद के। हाँ, नहीं तो कहते दूसरों के निकालने वाले, कहते ये भी खोड़ियार है, हर बात में नुक्स निकालेगी कि इसमें ये खोट है, इसमें ये खोट है, पर खुद का निकालना है ना। तो मैं किस, हम कितना अच्छा वर्णन करते देवियों का, तो आज वो लिखना है। अभी कोई भी लिख दो, फिर मैंने जो मन में आता है, देखो मन है ना हमारा, तुरंत आंसर करता है, इसलिए बहुत लॉजिक नहीं यूज करना, बहुत एनालाइज नहीं करना, ये करूं नहीं नहीं इसको छोड़ो दूसरा लेती हूं, फिर उसमें ना सारे छूट जाएंगे। तो इसलिए हाँ नहीं, वो पर्सनल अपनी डायरी में लिखो, पर छोटे कागज में नहीं लिखना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट कागज है लिख लिया तो दूसरा देंगे, जिन्होंने लिख दिया उसने, गुड है कोई बात नहीं। हाँ, पाचड़ भी लिखो, नो प्रॉब्लम। और ये है ना जो आपने लिखा ना, जिसकी मास्टरी आपको करनी है, तो वो अपनी पड़ोस वाली बहन से शेयर भी करना, विशेषता है ना, अच्छी बात है। तो बाजू में जो बैठे ना उनसे शेयर करना कि मैं ना ये मास्टरी करना चाहती हूं, है ना, जरूर सुनाओ, बहुत अच्छा लगेगा। अपने पास वो प्लेन कागज कितने हैं कृतिबेन, प्लेन कागज कितने हैं? और भी जिन्होंने लिख लिया है उन, वो थोड़ा हाथ रेस करेंगे तो दूसरे प्लेन हम देंगे। अच्छा, बहुत सारों ने लिख लिया, वेरी गुड। नहीं नहीं, जो प्लेन ही है, क्योंकि उसका डिफरेंट महत्व भी है। नहीं, दूसरी साइड है पर वो फिर चला जाएगा। आपने उसमें क्या लिखा, विशेषता लिखी, समान लिखे, वेरी गुड, कोई बात नहीं, लिखा दो, रहने दो, अच्छी बात है, वो समान आपने लिखा, ठीक है ठीक है। अभी आज है ना, ये जब हम योग युक्त शुरू करेंगे, तो एक तो आपको ये नाव लेकर आना है, अच्छे से याद से बाबा की दृष्टि लेते हुए इस नाव को बहुत दृढ़ता से इसमें डुबोना है। उसके बाजू में नैपकिन भी रखा है, क्योंकि आप डुबोएंगे तो हाथ गीले होंगे, फिर ऐसे ही लेकर नहीं जाना, नहीं तो ये सारा फिर है ना बिगड़ेगा। तो वो हाथ पोंछ करके, वैसे भी कहते ना अस्थि विसर्जन करने जाते हैं ना, तो फिर खुद भी स्नान करते हैं, वरना वो भी धोकर आते हैं, यहाँ स्नान करने का नहीं है जगह, पर पोछने का दिया है हमने कहते ना इसके बारे में ना लिया हमने ना, वो कंप्लीटली गॉन। तो इस प्रकार इसको डुबा करके, हाथ पोछ करके, आप बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा करके उठेंगे। और आज के बाद जिसने जो भी लिखा है, मेहनत होगी, देखो छोड़ना होता तो कब का छोड़ दिया होता, पर नहीं छूट रहा है, वो आप ने लिखी है बातें, तो आई अंडरस्टैंड कि बहुत मेहनत होगी उसमें, लेकिन बाबा से शक्ति भरेंगे और लेकर जाएंगे और फोकस रखेंगे। आपने जो गुण लिखा है, जो समान लिखा है खुद के लिए, उसको घर पे जाकर के अपने कबोर्ड पर चिपका देना, मैं ये देवी हूं, स्पेशल ये मेरा समान है ना, उसके साथ अभ्यास करना है। और एक और रिक्वेस्ट है, देखो ये सारी चीजें है ना, ये ग्राउंड लाइन, ग्राउंड क्लियर करने की होती है। देखो जब फ्लाइट भी होती है ना, आप सबने जो भी फ्लाइट में बैठे होंगे, तो फाइनल अनाउंसमेंट पायलट करता है कि अभी हमको ग्राउंड क्लियर मिल रहा है, अभी हम टेक ऑफ करेंगे, ऐसा वो बोलता है। तो ग्राउंड क्लियर होना इसको कहते हैं, खुद के साथ खुद की नेगेटिविटीज को निकाला, खुद स्वमान में स्थित हुए। अभी क्लैरिटी है यहाँ, जिसको निकालना है वो भी क्लैरिटी है, क्या भरना है वो भी क्लैरिटी है। दूसरा ग्राउंड लेवल क्या है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड में रहते हैं, मना धरा पर है, सबके साथ रहते हैं। तो एक काम करना है, आज विशेष हमारी निमित्त बहनों को नहीं कह रही हूं, निमित्त बहन घर पे जाकर के भी कर सकते, यहां करे तो भी अच्छा है, पर बहुत सुंदर ये एक्सरसाइज है कि आप आज 4:30 से 5 जो पत्र लिखना है वो आप बाबा को नहीं लिखेंगे, लेकिन आप सभी अपनी निमित्त बहन को पत्र लिखेंगे, और वो पत्र होगा ग्रैटिट्यूड का, थैंक्स का। उन्होंने जो आपके लिए किया है वो अहोभाव, वो कदर, वो फीलिंग जो आपके मन में आ रहा है, शांति से भले 4:30 से 5 में ही नहीं लिखना हो, पूरी दोपहर लिखना हो, लेकिन जब आप यहां आओ तब हर एक अपनी निमित्त बहन को वो लेटर, आपका वो प्रेम पत्र आपको निमित्त को देना है। मंजूर है? मंजूर है? इतना सारा हम साथ रहते हैं, इतनी पालना मिलती है हमको बड़ों से, तो वो जरूर लिखना। यहां अगर निमित्त नहीं आए हैं तो जाकर देना, पर लिखना तो आज ही है ना, जाकर देना। भले यहां है, एक बहन आई है तो एक बहन पर वो जरूर अपने निमित्त को वो थैंक्स का, ये बहुत बड़ा है ग्रेटिट्यूड की बात। एक कहानी सुनाऊंगी, एक पक्षी की, बहुत फेमस है, कई लोग सुनाते हैं इसको, कि डेजर्ट में एक पक्षी था। एक्चुअली ये ग्रैटिट्यूड को दिखाने के लिए ये स्टोरी बनाई हुई है कि डेजर्ट में जहां रण था, इतनी गर्म सैंड थी, समर डेज थे, धूप 12 बजे का डायरेक्ट सन आ रहा था, और उसमें एक पंछी, एक बर्ड, वो भटक गया था, और भटक करके वो डेजर्ट में चला गया था। उसको इतनी प्यास लग रही थी, लेकिन एक बूंद भी पानी कहाँ नजर नहीं आता था, उसको इतना धूप लग रहा था, तो कोई शेडो भी नहीं था, क्योंकि डेजर्ट था तो कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं था। जितनी बार वो थक करके गिर रहा था, उतनी बार गरम गरम सैंड उसके शरीर को जला देती थी, वो चिल्लाता था, बहुत बुरी हालत में था। तो ऐसी हालत में, क्योंकि शरीर भी वीक हो गया था, पानी भी नहीं मिल रहा था, खाना तो दूर की बात थी, पानी भी नहीं मिल रहा था, तो उसने क्या देखा कि एक एंजल ऊपर आकाश से जा रहा था। तो वो जोर जोर से आवाज देता है उस फरिश्ते को कि आप आओ। तो फरिश्ता आता है कि क्या बात है, तो कहते मैं बहुत परेशान हूं, भटक चुका हूं, और ये पानी भी नहीं मिल रहा है, मैं इतना प्यासा हूं, इतनी गर्म रेत है, इतना मेरा शरीर जल रहा है, मैं कहां बैठूं, बैठ भी नहीं सकता, जैसे ही पांव रखा वो जल जाता था, तो कि मैं इतनी सफरिंग क्यों है मेरे को, तब भगवान को पूछना जरूर। तो वो जाता है भगवान से, अपना कारोबार तो करता है, फिर पूछता है कि रास्ते में एक पंछी आवाज कर रहा था, तो ये बताया है कि मेरा सॉल्यूशन पूछ करके आना। तो भगवान कहते हैं कि उसको कहना कि ये जो उसकी कर्म भोगना है वो 7 साल तक चलेगी। तो वो तो और घबरा गया, कहते कि क्या मुंह दिखाऊंगा उस पंछी को बेचारे को, अभी इतना परेशान है, 7 घंटा भी नहीं हुआ है परेशान है, और 7 मास तक क्या होगा उसका हालत, 7 साल तक क्या होगी उसकी हालत, कहते ये तो मैं तो बोल ही नहीं सकता उसको। तो फिर वो जाने लगा, तो छुपते छुपाते जाने लगा कि पंछी कहां देख नहीं ले वे। तो पंछी ने तो देख लिया, क्योंकि वो तो उसी के इंतजार में था कि वो मैसेज क्या ला रहा है भगवान से। तो उसने वापस चिल्लाया, फिर बेचारा गया फरिश्ता, मुंह थोड़ा लटका हुआ था कि क्या बोला भगवान ने, तो कि भगवान तो कह रहे हैं कि ये हालत तो 7 साल तक ऐसी ही है। तो कि सॉल्यूशन क्या दिया, तो कि भगवान चुप रहे। तो कहते ठीक है, उसी समय उसको एक बात क्लिक हुई, कहते ठीक है मैं समझ गया। फिर 7 दिन के बाद फिर फरिश्ता उसी रास्ते से जा रहा था, तो देखा कि थोड़ा सा एक छोटा सा तालाब जैसा हो गया, पौधा भी लग गया, और वो नाच रहा है पंछी। तो वो तो आश्चर्यजनक भगवान के पास गया कि भगवान आप तो कह रहे थे 7 साल तक इसकी हालत खराब है, ये तो 7 दिन में ही अच्छा सा हो गया है, वहां तो पौंड भी हो गया, वो पौधा भी लग गया और वो तो नाच रहा है, ऐसा कैसे हुआ? तो भगवान ने सुनाया कि उसने जो किया ना, उसने उसके विकर्म नाश कर दिए, उसका जो बोझ था वो नष्ट कर दिया। तो कि उसने क्या किया? तो कहते कि वो हर बार थैंक्स कहना सीख गया, रेत में गिरा, शरीर जला, थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग, बूंद नहीं मिल रही है पानी की, फिर भी कहा थैंक्स, इस हालत के लिए भी थैंक्स, इसके लिए भी थैंक्स, उसके लिए भी थैंक्स, माना वो थैंक्स ही करता रहा। तो थैंक्स करते 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 उसके पाप नष्ट होते रहे और वो उसको वो पौंड और वो सब उसकी सुविधा मिलना शुरू हो गई। ये है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, माना एक कदर, एक अहोभाव, जिस जो बाबा हम बच्चों को, तब मेरे को समझ में आया जब मैं स्टोरी पढ़ रही थी, जो बाबा कहते ना, जिस हाल में रखा, जहां बिठाओ, जो खिलाओ, जैसे रखो, हर हाल में कैसे कैसे, अभी कुछ नहीं कहना, बताना जा करके, है ना, जैसे भी, हाँ बोला तो भी खुश, ना बोला तो भी खुश, ना में भी कुछ राज होगा। हर हाल में हम खुश रहना सीखे, हर परिस्थिति में खुश रहना सीखे, तो बहुत सारे भार हल्के हो जाएंगे ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो थैंक्स भगवान को तो है ही, हमारा जीवन इतना सुंदर बनाया है, लेकिन थैंक्स उस निमित्त आत्माओं को है जो हमारी पालना कर रहे हैं, है ना, जो हमें स्ट्रांग बना रहे हैं, जो हमें सुविधा इतनी दे रहे हैं, सब कुछ है ना, तो उनके बल बूते पर तो है हम। तो आज जरूर आप थैंक्स का लेटर अपने निमित्त को जरूर लिखिएगा, और हम हमारी जो निमित्त बहनें भी बैठी है उनको भी एक रिक्वेस्ट है कि आपके सेवा साथियों को केवल एक विशेषता जो आपके ध्यान में आती है वो लिख करके उनको गिफ्ट करिएगा, बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए, है ना, कोई चीज नहीं देंगे चलेगा, लेकिन आपकी विशेषता उनके ध्यान में है जिनकी कदर वो भी करते हैं, तो वो जरूर आप जितने भी आपके साथी हैं साथ में रहते हैं उनको वो लिख करके, बोले एक विशेषता, नहीं लिख सको तो बताइएगा कि आपकी ये बात बहुत अच्छी है ना, तो ये कर पाएंगे, ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, वेरी गुड, है ना। तो अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, सबसे पहला तो इसको डुबोएंगे, है ना, फिर वो सम्मान, फिर वो ग्रैटिट्यूड, ये सारा मिला जुला जो दुआओं वाला है ना, ये काम है कि आप यहां से रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है, सामान अभी आप अपने पास रखिए, अपने पास रखो उसको, एक्चुअली वो वही गिफ्ट देने के लिए दिया था, पर कोई बात नहीं, अभी आप बोल के भी कह सकते हो, दूसरे कोई कागज में भी लिख करके बोल सकते हैं, वो भी चलेगा, है ना। तो अभी हम रेड लाइट करेंगे और थोड़ा सा लाइन में आएंगे तो जल्दी जल्दी ये हो जाएगा, दोनों तरफी से आप लाइन आ करके फिर आप निकल सकते हो, लेकिन आपको बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा के समक्ष इसको डुबोना है, ठीक है, बाबा साक्षी इसका। ओम शांति।